आठ नंबर 15, पाठ का नाम नीलकंठ, लेखिका महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को देखते हैं। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, उनके बारे में महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो ये तो हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखा। अब हम पाठ नंबर 15 नीलकंठ, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, एक रेखा चित्र है। और इस पाठ में लेखिका ने मोर के स्वभाव और उसकी सुंदरता का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ के बारे में जो है लेखिका ने क्या बताया है, ये हम इस पाठ में देखते हैं। ये प्रस्तुत पाठ नीलकंठ महादेवी जी की रचना है और इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने बहुत ही सुंदर ढंग से मोर के स्वभाव, उसके क्रियाकलाप और उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। तो लेखिका ने इस पाठ में बताया है, इस पाठ का जो प्रारंभ है वो इस प्रकार से होता है। एक दिन लेखिका महादेवी वर्मा अपने किसी मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि उन्हें रास्ते में चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। उस दुकान पर अनेक प्रकार के पक्षियों के बच्चों को बेचा जाता था और पक्षियों के बच्चों को बेचने वाले दुकानदार को लोग बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के नाम से भी जानते थे। लेखिका उस बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के पास पहुंचकर अपने ड्राइवर को उस दुकान पर रुकने का संकेत करती हैं। उसी समय बड़े मियां चिड़िया वाले लेखिका को मोर के दो बच्चों के बारे में जानकारी देना प्रारंभ कर देता है। वह कहता है कि एक मोर है, दूसरा मोरनी है। मोर के पंजों से दवा भी बनती है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें खरीदने के लिए भी आए थे। लेकिन वह कहता है कि मैंने आपकी वजह से उन्हें नहीं बेचा, क्योंकि यदि वो लोग खरीद कर ले जाते तो इन बेचारे पक्षियों को क्या है मार देते, और आप इनकी देखभाल अच्छी तरह से करेंगी। लेखिका यह भी जानती थी कि बड़े मियां बहुत ही बातूनी हैं, वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। यदि उन्हें बीच में नहीं रोका गया तो वो दिन भर ही बातें करते रहेंगे, इसलिए लेखिका ने वहां ज्यादा देर रुकना उचित नहीं समझा और वे 35 रुपये देकर लेखिका जो है उस पिंजरे को खरीद लेती हैं और उस पिंजरे को उन्होंने अपनी गाड़ी में रखवा लिया। जैसे ही पिंजरा गाड़ी में रखा वैसे ही वो मोर के छोटे बच्चे छटपटाने लगे। तब ऐसा लगने लगा मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने के लायक हो गया है। अपने घर पहुंचते ही लेखिका ने बड़े जाली घर में उन्हें दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा नुकसान पहुंचाने के डर से नहीं रखा, बल्कि क्या करती है लेखिका, उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में जो उनका पढ़ाई का कमरा था उसमें ही रहती। प्रेम भी असाधारण है। और इसके बाद लेखिका उनके पिंजरे का दरवाजा अपने अध्ययन कक्ष में ही खोल देती हैं। जैसे ही लेखिका पिंजरे का दरवाजा खोलती है, वैसे ही दोनों पक्षी शावक उस कमरे में कभी सामान के पीछे छिप जाते हैं, तो फिर लेखिका उनके लिए दो कटोरियों में सत्तू की गोलियां और पानी भी रखवाती हैं। वे पक्षी लेखिका के कमरे में कभी मेज के नीचे, कभी अलमारी के पीछे छिप जाया करते थे। कभी वे रद्दी कागजों की टोकरी में बैठने लगे और धीरे धीरे एक दो दिन में उनका डर समाप्त हो गया। फिर वे निडर होकर लेखिका के पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगे। लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेखिका को अपने कमरे का दरवाजा बंद करना पड़ा, क्योंकि लेखिका को डर था कहीं उनकी जो लेखिका की पालतू बिल्ली थी वह उन पर आक्रमण न कर दे। इसलिए लेखिका जो है उनकी सुरक्षा के प्रति भी चिंतित रहती थी। जब लेखिका ने देखा कि लेखिका का कमरा इन मोर के बच्चों ने गंदा करना शुरू कर दिया, तो लेखिका ने उन्हें जाली घर में पहुंचा दिया। तो जाली घर वह स्थान था जहां पर लेखिका के द्वारा पाले गए बहुत से अन्य जीव और पक्षी जो है वहां पर रहा करते थे, सभी एक साथ रहा करते थे। तो लेखिका ने जब इन पक्षियों को जाली घर में पहुंचाया, तो वहां पर जो पहले से जो जीव जंतु थे उन्होंने दोनों नए मेहमानों का स्वागत एक नववधू के समान किया। और लेखिका ने यहाँ पर इस पाठ में बताया है लक्का कबूतर, उन्होंने नाचना छोड़ दिया और उनके चारों ओर गुटरगू गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश थे, वो गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे और जो छोटे खरगोश थे उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, और तोते मानो एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तो उस दिन जो है लेखिका को ऐसे लगा मानो उनके चिड़ियाघर में कोई भूकंप आ गया हो। इसके बाद लेखिका ने बताया है कि धीरे धीरे मोर के बच्चे जो है बड़े होने लगे। मोर के सिर पर कलगी सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच टेढ़ी और तेज हो गई, उसकी आंखें जो है और भी सुंदर हो गई थी, नीले रंग की चमक उनमें दिखाई देने लगी, गर्दन जो है नीले रंग की थी और बहुत ही सुंदर थी, और उसकी लंबी पूंछ थी बनाकर बहुत ही सुंदर। क्या बताया है ये हम इस पाठ में। और मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तौर से जो है उस पाठ के माध्यम से लेखिका ने पंखों की श्वेत श्याम, उसके जो पंख थे श्वेत और श्याम रंग के थे और वो भी बहुत अधिक सुंदर थे। तो आगे फिर लेखिका ने इस पाठ में क्या बताया है ये हम देखते हैं। आगे लेखिका ने इस पाठ में बताया है मोर की गर्दन नीली होने के कारण लेखिका ने उसका नाम रखा नीलकंठ, और मोरनी जो है सदा ही उसके नीलकंठ के आगे पीछे घूमती थी, वह सदा उसके साथ रहती थी, इसलिए लेखिका ने उसका नाम रखा राधा। तो इस प्रकार लेखिका ने मोर का नाम रखा नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा राधा। नीलकंठ की जो क्रियाकलाप थे वो लेखिका को बहुत अधिक अच्छे लगते थे, जैसे नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ नीचे करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करके शब्द सुनना, और लेखिका वे मेहमानों के आने पर वह उनका स्वागत जो है नीलकंठ कैसे करता था, अपने पंखों का मंडलाकार छाता बनाकर उनको अपने पंखों को फैलाकर नृत्य किया करता था, सुंदर नृत्य किया करता था। और वर्षा ऋतु में जो है नीलकंठ का नृत्य करना लेखिका को बहुत अधिक भाता था। लेखिका को ऐसा अनुभव होने लगा कि सभी जीव जंतुओं ने नीलकंठ को अपना संरक्षक व सेनापति नियुक्त कर लिया। वह नीलकंठ क्या किया करता था, सेनापति के समान ही वह सभी जो जाली घर के जीव जंतु थे सभी को लेकर सुबह प्रतिदिन उस स्थान पर पहुंच जाता था जहां दाना उनको दिया जाता था। वह घूम घूम कर सबकी रखवाली करता और किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंड भी दिया करता था। उसे पता चल जाता कि यदि किसी ने क्या है किसी जीव जंतु ने कोई गड़बड़ की है तो वह उनको दंडित भी करता था। वह चौंस से खरगोश के बच्चों को क्या है कान पकड़कर तब तक उठाए रखता था जब तक कि वो चीखने न लगते हो, और फिर उसके डर से कोई भी जीव उसे नाराज करने का अवसर नहीं देता था। मोर का उन जीवों के प्रति प्रेम भी असाधारण था। जब वह मिट्टी पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता था, जब वह छाया में क्या है मिट्टी पर पंख फैलाकर दोपहर में जब विश्राम किया करता था तो उसकी लंबी घनी पूंछ पर सभी जो छोटे पक्षी और जीव जंतु थे वो सभी क्या है खेल खेला करते थे। फिर इसमें पाठ में जो है आगे लेखिका ने एक बार एक घटना घटित हुई उसके बारे में बताती हुई लेखिका कह रही है कि एक दिन एक सांप न जाने कहां से उनके जाली घर में आ गया और उसने एक छोटे खरगोश शिशु को जो है अपने मुंह में पकड़ लिया था, और नीलकंठ ने जो है उस खरगोश शिशु के जीवन की रक्षा बहुत ही बहादुरी से की। तो किस प्रकार बहादुरी से की उसकी उस घटना का वर्णन भी लेखिका ने यहाँ पर किया है कि जो सर्प था उसने क्या किया, सर्प ने जो है वो शिशु खरगोश को उसका जो आधा पिछला शरीर था अपने मुंह में दबा लिया और जो आधा बाहर था उससे चीख चीख की जो आवाज थी वो भी बहुत ज्यादा तेज नहीं निकल रही थी और किसी को सुनाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन नीलकंठ ने पता नहीं कैसे उसके चौकन्ने कानों ने उस दुख को पहचाना और तुरंत ही वह उसकी सहायता के लिए वहां पर आ गया और सांप के फन पर क्या है चोंच से उसने प्रहार करना नीलकंठ ने प्रारंभ कर दिया, और जब इतने प्रहार किए उस सांप के फन पर नीलकंठ ने कि नीलकंठ के प्रहारों से जो है सर्फ अदमरासा हो गया और पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का जो बच्चा था उसके मुंह से बाहर आ गया। राधा ने जो है उस समय मदद की आवश्यकता नहीं समझी और इसके बाद तुरंत ही जो है लेखिका और उसके घर वालों को इस घटना की सूचना मिलती है तो सभी वहां पर आते हैं, माली भी पहुंचता है। तब तक नीलकंठ ने सांप के जो है दो टुकड़े कर दिए थे और उस शिशु खरगोश को रात भर अपने पंखों के नीचे दबा कर रखा, उसको क्या है गर्मी देता रहा। तो इस प्रकार के उसकी बहादुरी और जीवन रक्षा के जो स्वभाव को देखकर लेखिका ने लिखा है कि उस पक्षी के स्वभाव को देखकर उन्हें समझ आ गया है कि कार्तिकेय जी ने अपने युद्ध वाहन के लिए इस पक्षी को क्यों चुना होगा। तो मयूर जो है कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक नहीं है। तो आगे लेखिका ने जो है नीलकंठ की के नृत्य के बारे में बताया है कि जब वर्षा ऋतु के समय मेघों की सांवली छाया में वह इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार छाता बनाकर बहुत ही सुंदर नृत्य किया करता था, और राधा जो है नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी लेकिन वह भी उसका साथ निभाया करती थी। तो इस प्रकार से जो है उसके दोनों के नृत्य की सुंदरता का भी वर्णन जो है बहुत ही सुंदर नृत्य का वर्णन लेखिका ने यहाँ पर किया है। और आगे जो है लेखिका ने बताया है, आगे लेखिका ने नीलकंठ के बारे में बताते हुए लिखा है कि जब भी लेखिका जाली घर के पास पहुंचती थी तो उनके लेखिका के पहुंचते ही जो नीलकंठ था वो अपना नृत्य आरंभ कर देता था और अनेक विदेशी महिलाओं ने तो उसकी मुद्राओं को अपने प्रति सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की भी उपाधि दे दी थी। फिर आगे लेखिका इस पाठ के बारे में बता रही हैं कि एक दिन किसी काम से लेखिका नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उनकी कार को रोक लिया और एक मोरनी उन्हें दिखाई जिसके पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। तो लेखिका ने फिर 7 रुपए देकर उसे भी खरीद लिया, फिर उसे अपने घर ले आती हैं, उसके पंजों की मरहम पट्टी करके 1 महीने में वह ठीक हो जाती है, फिर थोड़ा डगमगाती हुई वह अपने कदमों पर चलने लगती है। फिर आगे लेखिका उसे भी अपने जाली घर में पहुंचा देती है और उसका नाम जो है लेखिका ने रखा कुब्जा। वह अपने नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव भी वैसा ही सिद्ध हुआ क्योंकि वह जो कुब्जा थी नीलकंठ और राधा को जब भी एक साथ देखती थी तो उन्हें मारने के लिए दौड़ती थी, और किसी भी जीव जंतु से क्या है उसकी मित्रता नहीं थी। उसने अपनी चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख भी तोड़ डाले थे। नीलकंठ तो उससे दूर भागता था। नीलकंठ जो है कुब्जा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वह उससे दूर भागता था। और कुब्जा ने क्या किया, राधा के अंडे भी फोड़ डाले। इस वजह से नीलकंठ और राधा जो है दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। उनकी खुशी का अंत हो गया था। तो इस घटना जब उसके अंडे फोड़ दिए गए तो नीलकंठ जो है बहुत दुखी रहने लगा, और जालीदार घर से बाहर भी निकल जाता था। एक बार तो भूखा प्यासा आम के पेड़ पर छिपा रहा, और लेखिका सोचती थी कि सब कुछ जो है समय के अनुसार ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह इतना दुखी हुआ बेचारा, और उस दुख के कारण उसके जीवन का ही अंत हो गया। फिर उसके बाद लेखिका जो है उसके मृत शरीर को गंगा में प्रवाहित कर देती हैं। उसके बाद फिर लेखिका ने आगे बताया है कि राधा जो है नीलकंठ का इंतजार करती रहती है, उसे उम्मीद है कि वह पहले की तरह वापस लौट कर आएगा। और कुब्जा ने भी कोलाहल के साथ जो है नीलकंठ को की खोज प्रारंभ कर दी। जैसे ही जाली घर का दरवाजा खुलता है तो वह बाहर आ जाती है। आम अशोक कचनार आदि जो वृक्ष है उनकी शाखाओं में से ढूंढती रहती है। तो एक दिन क्या हुआ, आम की शाखा से वह उतरी ही थी कि अल्सेशियन कुतिया जो कि कजली उसका नाम है, तो वह कुब्जा के सामने आ गई, और जो कुब्जा है उस कजली पर भी चौंक से प्रहार करती है और कजली ने भी उस पर प्रहार किया। तो इससे जो है कुब्जा के जीवन का अंत हो गया। तो इस प्रकार जो है लेखिका ने यहाँ पर तीन पक्षियों की विभिन्न प्रकृति जो है उनका अलग अलग प्रकार के स्वभाव के बारे में जो है लेखिका ने यहाँ पर बताया है। और लेखिका अंत में कह रही हैं कि राधा जो है सदा नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रहती है, और वर्षा ऋतु में भी वह अपने नीलकंठ को बुलाती रहती है। नीलकंठ जो है सदैव उसकी यादों में ही बसा हुआ है।